Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से चौथा स्कंद अध्याय क्रमांक 27। शीर्षक है राजा पुरुंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। श्लोक क्रमांक 19। कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं वरमिच्छति पर्यटन्ति न भैरिष्मा प्रत्यनन्दत्त कश्चन। कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं वरमिच्छति पर्यटन्ति न बहिरिष्मणः प्रत्यनन्दन्त कश्चन। कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं वरमिच्छति पर्यटन्ति बहिरिष्मणः प्रत्यनन्दत्त कश्चन। कलस्य भूताकाशेत् किमर्मिच्छति पर्यटन्ति न भविष्म प्रत्यनन्दस्तु कश्चन कलस्य भूताकाशेत् त्रिलोकीं वरमिच्छति पर्यटन्ति न भविष्मना प्रत्यनन्दन्त कश्चन कालस्य दुहिताकाशेत् त्रिलोकीं वरमिच्छति पर्यटन्ति भविष्मना प्रत्यनन्दन्त कश्चन। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी को द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ कालस्य काल की, दुहिता कन्या पुत्री, काचित कोई, त्रिलोकिम तीन लोकों में, वरम पति, इच्छति की आकांक्षा से, पर्यटन्ति सारे संसार में घूमती हुई, न कभी नहीं, भरिष्मन हे राजा प्राचीन भरिषित, प्रत्यनंदत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, कश्चन कोई। अनुवाद, हे राजा प्राचीन भरिषित, इसी समय काल की कन्या तीनों लोकों में पति की खोज कर रही थी। यद्यपि उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, किंतु वह घूमती रही। तात्पर्य, समय बीतने पर जब शरीर वृद्ध होता हो जाता है तो एक प्रकार से अक्षम हो जाता है और जरा या बुढ़ापा घेर लेता है। इस संसार में मूलतः चार प्रकार के कष्ट हैं, जन्म जरा रोग तथा मृत्यु। न कोई विज्ञान न कोई विचार इन चारों प्रकार के कष्टों का कोई हल प्रस्तुत कर पाया है। यहां पर जरा की अक्षमता को आलंकारिक ढंग से काल की कन्या के रूप में व्यक्त किया गया है। यद्यपि उसे कोई नहीं चाहता, किंतु वह किसी को भी अपना पति बनाने के लिए उत्सुक रहती है। कोई भी वृद्ध तथा अक्षम नहीं बनना चाहता, किंतु यह सबों के लिए अनिवार्य है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशता। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गर्ति। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में सादर प्रणाम अर्पण करता हूँ और आपके आशीर्वाद की अभिलाषा करते हुए इस श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। तो इस श्लोक में समय के बारे में बताया गया है कि जब समय बीतता है तो व्यक्ति भौतिक जगत में वृद्धि होता है। तो एक शुद्ध भक्त के जीवन में भी समय बीतता है और एक भौतिकवादी व्यक्ति है उसके जीवन में भी समय बीतता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये समय बीतता है वो अलग अलग कार्य करता है अलग अलग जीवों के ऊपर। जैसे पहले के जमाने में एक कैसेट रहता था तो उसमें रील रहती थी, तो दोनों रील के पहिए घूमते रहते हैं लेकिन एक रील खाली होता रहता है और एक रील भरते रह जाते हैं। तो इसे ही हम कंपेयर कर सकते हैं शुद्ध भक्त और भौतिकवादी व्यक्ति। हाँ, इस भौतिक जगत में समय तो बीत रहा है, ऐसा नहीं कि भक्तों के लिए समय रुक गया और भौतिकवादी लोगों के लिए समय चल रहा है। हमारा भक्ति में प्रवेश करने के बाद समय रुक जाता है, ऐसा नहीं होता। हमारा भी समय चलते रहता है और भौतिकवादी व्यक्तियों का भी समय चल ही रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि जो वैष्णव है या जो भक्त है उनका समय बीतना भगवान के पास लेके जा रहे हैं, और जो भौतिकवादी जीवन में जगत में जो लोग जी रहे हैं वो भगवान से दूर जा रहे हैं। तो जो शुद्ध भक्त है और शुद्ध भौतिक है उनका समय का डिसाइडेड है कि क्या हो रहा है, एक नजदीक जा रहे हैं एक दूर जा रहे हैं, लेकिन जो बीच में है उनका मुश्किल होता है। वो कभी ही जाकर इधर आ जाते हैं इस साइड में तो उनका रील खुल जाता है और थोड़ा समय के बाद वो उधर जाते फिर से रील भर जाता है, फिर जैसे कि वैसे ही रह जाते हो। तो हमें उस भौतिकवादी जीवन से भक्ति में आना है। तो ये हमारे लिए प्रस्तावना किया गया है, तो इसका आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि भौतिक जो काल है उसकी एक कन्या है, उसका नाम है जरा, और वो क्या कर रही है, उसे कोई नहीं ढूंढ रहा है लेकिन वो अपने पति को ढूंढ रही है, और उसे कोई भी चलता है। ऐसा नहीं कि भक्त है तो छोड़ देगी, ऐसा नहीं। अभक्त भी चलता है, भक्त भी चलता है, पुरुष भी चलता है, स्त्री भी चलता है, कोई भी चलता है। तो ये उनकी खासियत है। और वो पहले देखते नहीं कि कुंडली मैच हो रहा है या ऐसा कुछ, उनके लिए सब मैच होता है। और उसके लिए मुहूर्त वगैरह की भी जरूरत नहीं। तो इंग्लिश में जब किसी का आयु पूछते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि हाउ ओल्ड यू आर, है ना। तो वो ऐसा नहीं बोलते कि हाउ यंग यू आर, वो सब बोलते हैं कि आप कितने बूढ़े हैं, है ना। तो कोई बोलेगा मैं 10 साल का बूढ़ा हूँ, कोई बोलेगा मैं 20 साल का हूँ। तो ये बुढ़ापा किस पे निश्चित है? बुढ़ापा निश्चित है जब जिसकी मृत्यु से कितना दूर है वो उतना बूढ़ा है। अगर कोई समझो किसी का मृत्यु 25 साल में हो रहा है तो उसका बुढ़ापा कब है? 25 साल में उसका बुढ़ापा है ना, 20 साल में उसका बुढ़ापा है। इसलिए हमें लगना चाहिए कि हम बूढ़े हो रहे हैं, क्योंकि हमें मृत्यु का डेट पता नहीं है कि कब हमारी मृत्यु हो रही है। इसलिए हमें सतर्क होना चाहिए कि हमें हमारा जो समय है वो हमारे हाथ से जा रहा है। तो तो हमें ऐसा ही जीवन व्यतीत करना है जिससे हम भौतिक कर्म बंधनों में ना गिरे। तो समय बीत रहा है लेकिन हमारा प्रतिक्रिया क्या है? तो जो भगवद्गीता में पांच विषय है, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, तो कर्म ही क्या है? वो है अशाश्वत, बाकी सब शाश्वत है। तो ये कर्म का प्रयोजन क्या है कि वो हमारा गंतव्य स्थान निर्धारित करेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हम अच्छे स्थान पे जाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे स्थान पे जाएंगे। लेकिन अगर हमें भगवत धाम जाना है तो हमें भगवत कार्य करने चाहिए, है ना? तो इसलिए बोला गया है कि भौतिकवादी व्यक्ति भी उसका जीवन समर्पण जीवन व्यापन कर रहा है और एक भक्त भी अपना जीवन व्यापन कर रहा है। तो ऐसा देखते हैं कि हम भी सुबह उठते हैं, भौतिकवादी व्यक्ति भी उठता है, वो भी रात को सो जाता है, हम भी रात को सो जाते हैं, लेकिन दिन भर में हमने क्या किया और दिन भर में उसने क्या किया, उसमें अंतर होना चाहिए, है ना? क्योंकि भौतिकवादी जीवन जो जीता है उसका हर कार्य किसके लिए होता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। अगर वो मार्केट भी जाता है या कुछ खरीदी करता है या कुछ सेल भी करता है या वो दिन भर इधर से गाड़ी से वहां चलाता है जाता है, इधर से उधर जाता है, तो उसका कार्य क्या होता है? पूरा इंद्र तृप्ति के प्रति लगा हुआ रहता है, समर्पित रहता है। और उसी प्रकार जो भक्त है वो भी घूम रहे हैं, वो एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और सुबह से शाम तक वो भी कष्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका कष्ट कैसा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए उनके ऊपर समय क्या करेगा? प्रभाव नहीं कर सकता। तो उसे समय से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका समय पूरा आध्यात्मिक हो चुका है ना? और जो यहां पर वो कर रहे वही आध्यात्मिक जगत में हो रहा है, वहां पर भी भगवान के भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं और वही सेवा इस धरातल पर ये भक्त कर रहा है। तो इसलिए इस भक्त को एक काल उसका उनके ऊपर अधिकार नहीं जा सकता। तो काल के दो प्रकार है, एक है आध्यात्मिक और एक है भौतिक। तो जो आध्यात्मिक काल है वो क्या है? शाश्वत, वो नित्य है। जैसा हमारे तिरुपति मंदिर में रोज दोपहर को भगवान की शादी होती रहती है, तो उसे बोला जाता है नित्य कल्याण, है ना? और भौतिक जगत में लोगों की शादी कितनी बार होती? मैक्सिमम एक बार, मीन्स मिनिमम एक बार, ज्यादा करना है तो कितना करेंगे, कर करके एक चार पांच करेंगे, हाँ? लेकिन उनको नहीं बोल सकते नित्य कल्याण चल रहे होते, हाँ? और वो कल्याण कल्याण होता है वो भी पता नहीं है, हाँ? लेकिन जो भगवान है उनकी जो कार्य है, वो रोज सुबह उठते हैं, उनको रोज इतना भोग लगता है और उनकी इतनी सेवा होती रहती है, वो क्या है? नित्य है, ना? वो कभी उसमें खंड नहीं होता है। या आप पंडरपुर में जाएंगे तो रोज भगवान का वहां पर अभिषेक हो रहा है इतने सालों से, सुबह दूध दही मक्खन शहद घी इन सब चीजों से उनका अभिषेक होता है और उनका बाद में दिन भर उनका श्रृंगार होता है, दिन भर इतने सारे लोग उनके चरणों पे माथा टेकते। और ये क्या चल रहा है? नित्य चल रहा है, वहां पर कभी ऐसा लोग इस पे नहीं जाते, हड़ताल पे नहीं चले जाते वहां पर, हाँ? तो ये है आध्यात्मिक जगत का स्वरूप, वहां पर नित्य चिरकाल तक भगवान की सेवा चलती रहती। और उस नित्य काल में अगर हमें जुड़ना है तो हमें भगवान के भक्तों के साथ संपर्क में आना चाहिए और ऐसे ही कार्यकलाप में हमें लगना चाहिए जो कि जिसका स्वरूप नित्य है। लेकिन जो भौतिक समय है वो कैसा है? उसका तीन भागों में विभाजन होता है, एक है भूत, दूसरा है वर्तमान और तीसरा है भविष्य। और इन तीनों कालों का परिणाम क्या है? भूतकाल व्यक्ति को शोक में लेके जाता है। हर व्यक्ति कभी भी अपने जो पिछला आयुष्य देखता है तो उसको दुखी लगता है कि अरे मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, उससे कभी भी उसको संतुष्ट नहीं होती उसका भूतकाल देखकर। वो हर समय उसे भूतकाल से शोक ही उत्पन्न होता है ना, कि मैं थोड़ा सा प्रयास करता तो मैं इंजीनियर हो जाता था या डॉक्टर हो जाता था, मैं ये हो जाता फलाना हो जाता था और हो जाता था। तो वो अपने भूतकाल से सदैव शोक में स्थिति में रहता है, और जो समय अभी चल रहा है उसमें उसे क्या होता है, मोह माने ग्रीड, कि मैं ये लूंगा वो करूंगा ये करूंगा, मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए, इस मोह में वो गिरा रहता है। और जब वो अगर विचार करता है, हालांकि भौतिक जगत में कम लोग भविष्य के बारे में विचार करते हैं, लेकिन अगर वो विचार करता है भविष्य के बारे में तो उसे क्या लगता है, डर लगता है कि मेरा भविष्य में क्या होगा। इसलिए सब LIC है और या जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये सब के लिए लोग निकालते हैं, गाड़ी लेने से पहले वो एक्सीडेंट का इंश्योरेंस कराते हैं, या गाड़ी खरीदते समय उसमें वो देखते हैं कि उसमें वो एक एयरबैग आता है क्या, वो आता है क्या, ज्यादा एयरबैग होना चाहिए ऐसा वो सोचते, मीन्स वो समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में एक्सीडेंट होने वाला है ना। तो ये है भौतिक जगत का समय। आगे का अगर सोचेंगे तो उनको क्या होता है, भय उत्पन्न होता है। तो ये तीनों चीज एक भक्त के ऊपर लागू नहीं होता। कभी भी भक्त ऐसा नहीं सोचता कि मेरा जीवन, अरे मैंने ज्यादा भक्ति कर लिया इसलिए वो दुखी नहीं हो जाता है ना, कि अरे मैंने क्या, मैं इतने साल भक्ति किया कुछ मिलने वाला है कि नहीं पता नहीं, ऐसा नहीं, उसको कभी दुख नहीं होगा है ना, कि उसके भौतिक भक्ति के लिए वो दुखी नहीं होता कि मेरी मैं पूरी मेरा जो तरुण था, मेरा जो जवानी था मैंने भगवान के लिए लगा दिया, अभी मेरे के पास क्या, इसलिए वो दुखी नहीं होता है ना। और ना वो चिंता करता है भगवत धाम का है ना, क्योंकि भगवत धाम में सबका जगह फिक्स है। भौतिक जगत में क्या है, अगर 1000 लोग या 1,00,000 लोग एग्जाम दे रहे तो कितने लोगों को चुना जाएगा, एक ही व्यक्ति को। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट जब एग्जाम लेता है 1,00,000 लोग उसको अप्लाई करते और उनसे 1,00,000 लोगों से जितना धनराशि आएगा वो एक व्यक्ति का वेतन पूरा लाइफ लॉन्ग कर देगा है ना। सबसे अगर वो 1,000 रुपये लेते हैं तो 1,00,000 लोगों ने एग्जाम दिया आशा से कि मुझे 50,000 का जॉब मिलेगा, तो जितना वो 1,00,000 लोगों से वो धन इकट्ठा करेंगे उसे एक व्यक्ति का वो जीवन भर का क्या बोलते हैं उसको वेतन दे सकते हो, और एक ही व्यक्ति को वहां पर जॉब लगता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे और बाकी के लोग भक्ति कर रहे तो ऐसा हमें डर नहीं लगना चाहिए कि ये जाएंगे भगवत धाम मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं। तो भगवान सबको लेके जाएंगे, इसलिए ये जो आध्यात्मिक जीवन में उसमें कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन है लेकिन सबको प्रोत्साहन देने के लिए, किसी को खींचने के लिए। तो आध्यात्मिक जगत में सबका स्थान निश्चित है, इसलिए वहां पर ग्रीडी बनेगा, ग्रीडी भौतिक उसके अंदर मोह नहीं आता। आध्यात्मिक मोह हो सकता है लेकिन भौतिक मोह उसके अंदर नहीं होता। और रही बात भय की, वो तो भक्त को छूता नहीं, वो डरते ही नहीं मृत्यु से, क्योंकि डरने का जरूरत ही नहीं है ना। क्योंकि अगर व्यक्ति इतने अच्छे से भक्ति कर रहा है तो उसका भौतिक जगत का कुछ भी बुरा उसके ऊपर नहीं हो सकता है ना। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि जो अध्यात्म में लगा है वो व्यक्ति मृत्यु के गले लगाते है, मृत्यु को अपनाना चाहता, वो मृत्यु से भागता नहीं है ना। तो ये है आध्यात्मिक समय का रूप जो है नित्य। तो इसलिए जो हम देखते हैं कि भौतिक व्याधि व्यक्ति है वो हर समय परेशान होते रहते हैं, इतना समय का बदलाव आते रहता है। जब उसके जीवन में बुढ़ापा आता है तो जिस व्यक्ति को लोग इतना उसकी प्रशंसा कर रहे होते वो अकेला गिर जाता है ना। जब वो जवान रहता है तो उसके आजू बाजू में बहुत सारे लोग रहते, या जब उसकी पदवी रहती तो उसके सामने इतने सारे लोग रहते, लेकिन जैसा ही उसका पद चला जाता है तो उसे कोई पूछता भी नहीं, और जब बुढ़ापे में उसको आईसीयू वगैरह ऐसे जगह पर डाला जाता है तो कोई उसके साथ नहीं रहता है। तो उस समय उसे बहुत दुख होता है और इतना दुख होता है कि वो वापस नहीं आ सकता अपना जो गलती किया उसको सुधारने के लिए, लेकिन वो उसमें दुख में जीवन त्याग देता है। तो ऐसा दुख भक्त के जीवन में नहीं आता है। वो सदैव भगवान के साथ जीता है और मरते समय समय भी उसके साथ भगवान शाश्वत रूप में रहते हैं। कोई रहे ना रहे, व्यक्ति के साथ भगवान सदैव रहते हैं और इसका उससे अनुभव होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो भगवत भक्ति में लगे हैं वो लोग क्या करते थे, जब उनका गृहस्थ आश्रम हो जाता था तो वो जंगल में चले जाते थे। और जंगल में ऐसा नहीं कि वो अपना पूरा चार नौकर, एक पलंग या रसोई, ऐसा कुछ लेके नहीं जाते थे। वो जंगल में अकेले चले जाते थे और बुढ़ापे में इतनी मदद चाहिए होती है लोगों को, इतनी बीमारी वगैरह होता है, तभी भी वो अकेले जंगल में जाते थे। तो ये समर्थ, ये जो उनके अंदर जो धैर्य है वो किस लिए आता था, क्योंकि उनको पता है कि भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। और हालांकि ये सत्य स्थिति है कि भगवान के सिवा हमारी और कोई रक्षा नहीं कर सकता और हमें उसे जानना चाहिए, और भक्त होने के नाते हमें तो उसके ऊपर विश्वास होना ही चाहिए, है ना। अगर हम भक्त होने के बाद अगर हमारे अंदर इतना विश्वास नहीं आता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे तो हम भक्त नहीं बोल सकते खुद को। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का जो भक्त है उसे मृत्यु से डर नहीं लगना चाहिए, ये उसका सबसे बड़ा लक्षण है। कि भक्त और मृत्यु से डर रहा है ये विरोधाभास है ना। तो जो भक्त है वो कभी भी मृत्यु से डरता नहीं, है ना। तो इसलिए अगर कोई मृत्यु से डर नहीं रहा है तो उसे क्या समय उसको बिगाड़ देगा, है ना। अगर उसे कैंसर हो जाए या उसे कुछ भी हो जाए तो वो मृत्यु से बिल्कुल डरेगा नहीं। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति जब उसको बुढ़ापे का समय आता है तो उसको बहुत डर लगता है ना। और वो डर के मारे ही, जब वो हम बहुत बार देखते हैं कि लोग प्राण त्याग करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उनका मृत्यु के समय क्या होता है, हाँ वो टट्टी पेशाब ऐसा उनका हालत होता है ना मृत्यु के समय। मुंह खुला रहते, आंखें एकदम बड़ी हो जाती है और वो सब लोग उनके चेहरे के ऊपर दुख का दुख छाया हुआ रहता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में लोग मृत्यु के समय आते हैं तो उनका चित्त एकदम समाधान पूर्वक रहता है और मृत्यु एकदम आनंद से मृत्यु को अपनाते हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपना समय भगवान की सेवा में लगाया है। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवत धाम या मृत्यु ये क्या है, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के जैसे। अगर कोई किचन हॉल में है, हॉल से अगर बेडरूम जा रहा है तो उसे दुख नहीं लगता है। उसी प्रकार कोई भौतिक जगत छोड़ के आध्यात्मिक जगत जा रहा है तो उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। लेकिन डर किसको लगता है, जिसने पूरे पाप कर्म किए और उसको मृत्यु के पहले ही यमयातना चालू हो जाते है ना। अभी हॉस्पिटल भी क्या है, एक प्रकार का यमलोक है, वहां पर किसी की आरती वगैरह नहीं की जाती। वहां पर तो सबको क्या किया जाता है, मरने से पहले ही उसके अंदर उसका पूरा धुलाई चालू हो जाता है वहां पर, है ना। तो ये बड़ा दुर्दैवी स्थिति है व्यक्ति के जीवन में। तो इसलिए अगर हमारा जीवन हमें सफल बनाना है तो हमें हमारा समय भगवान की सेवा में लगाने के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए। जैसा हमने पहले सुना कि एक आध्यात्मिक समय है, एक है भौतिक समय। और हम क्या है, अभी अभी हम पूरे भौतिकवादी नहीं है जो पूरा समय भौतिकता में लगा रहे, और ना हम पूर्ण शुद्ध भक्त है जो पूरा समय भगवान की चेतना में लगे। तो अभी हम क्या पर बीच की स्थिति में, हम सुबह 4:30 से लेके 9:30 तक आध्यात्मिक रहते और बाद में 9:30 से लेकर अगले दिन के 4:30 तक वो पूरा जो समय हमारे पास है उसमें हमें संघर्ष करना पड़ेगा कि वो मैं मेरे लिए लगा रहा हूँ कि भगवान के लिए लगा रहा हूँ। और जितना जो जीत जाएगा वो उस डायरेक्शन में ज्यादा चला जाएगा। अगर हम हमारा समय पूरा शुद्ध भक्तों के जैसे लगाएंगे या उनके दिए हुए आदर्श का पालन करेंगे तो हमारे लिए वो समय क्या होगा, सरप्लस हो जाएगा। हाँ, माने सुबह का 5 घंटा और बाकी दिन में के बचे हुए 19 घंटे, तो उसमें भी हम इधर उसको जोड़ते जाएंगे। और जब हम जीत जाएंगे तो पूरा हमारा 24 घंटा क्या रहेगा, भगवान के सेवा में लग जाएगा। लेकिन अगर हमारा सुबह का समय में ही हम दुर्बल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा भौतिक जो समय 19 घंटा था वो भी हमारे 5 घंटे पे अटैक कर देगा। फिर हम मॉर्निंग प्रोग्राम भी नहीं कर पाएंगे या ये नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे, तो उस प्रकार से हम क्या हो जाएंगे, 24 घंटे भौतिक जीवन जिएंगे। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए भक्त बनने के नाते कि हम हमारा समय पूरा आध्यात्मिक कार्यों में लगाए। और इसलिए रूप गोस्वामी जो उपदेश अमृत में शिक्षा देते हैं तो उसमें उन्होंने बोला है, स्मृत्यो क्रमेण मनसा नियोज रसना नियोज, ऐसा कुछ। तो उस श्लोक में क्या बोला उन्होंने कि व्यक्ति को अपने 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और उसके लिए उसे एक उदाहरण चाहिए होता है ना। तो उदाहरण कौन है, जो ब्रजवासी लोग हैं वो लोग अपना जीवन कैसा बिताते थे उसी प्रकार हमें भी हमारा जीवन बिताना चाहिए। जैसे यशोदा नंद महाराज जो सुबह से उठे, या ग्वाल बाल है या गैया है या बाकी जो गोपियां हैं, वो क्या कर रही है, वो पूरा समय भगवान की सेवा में लगाया हुआ है। अगर वो मक्खन भी मथ रहे तो भी वो भगवान का स्मरण कर, वो गाय भी चरा रहे तो भी वो भगवान का स्मरण कर। तो हर प्रकार से वहां का जो जीव है, जो भी भगवत धाम के या वृंदावन के जो निवासी है, वो पूरा समय भगवान के लिए ही बिता रहे। और भौतिक जगत में लोग क्या है, पूरा जीवन वो खुद के लिए ही बिता रहे, ऐसा कोई नहीं कि दूसरों के लिए बिता रहा है, ऐसा नहीं। हालांकि हम देखते हैं कि जो सोशल वर्कर्स है या जो नेता लोग हैं वो दूसरों के लिए जीने का दिखावा करते हैं, लेकिन आप अगर अंदर तक जाएंगे तो दिखाई देगा कि वो खुद के लिए ही जी रहे, है ना। तो ये है, उसे बोला जाता है एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। जैसा कोई बोलता है कि मैं मारवाड़ी समाज के लिए जी रहा हूँ, या मैं क्या बोलते हैं मानव जाति के लिए जी रहा हूँ, या कोई लोग अगर बहुत आगे बन गए तो उनको क्या लगता है कि मैं पशुओं के लिए भी देख रहा हूँ। हाँ, तो उनका जो ये भाव है कि हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं वो क्या है, एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन जो भगवान के भक्त है वही सबका कल्याण कर सकते क्योंकि वो भक्ति कर रहे। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। भक्त बनने के बाद अगर हम जॉब कर रहे हैं तो लोग आकर पूछते हैं, अरे आप क्या कर रहे हैं, आप समय वेस्ट कर रहे, जाओ बाहर जाओ, इतने भिखारी लोग हैं उनका कल्याण करो, उनको खिलाओ, ऐसा कोई अगर हम बोलेगा तो हमें उससे प्रलोभित नहीं होना चाहिए कि हमें सच में नहीं प्रश्न नहीं करना चाहिए, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो स्वार्थी हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन जो अगर हम अच्छे तरह से भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो जो भी हमारे संपर्क में आएगा उनका भी कल्याण होने वाला है। तो इतना हमारे अंदर दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। तो ऐसा बोला जाता है कि कोई अगर भक्त बन जाता है तो उसके जो पूर्वज है वो बहुत खुशी से वहां पर नृत्य कर रहे होते पितरलोक में, और वो पितरों में इतना वो डांस वगैरह कर रहे थे, बाकी लोग पूछते अरे क्या हो गया, क्यों आप इतना नृत्य कर रहे, तो वो लोग बोलते कि ये हमारा पोता भक्त बन गया। हालांकि माता पिता यहाँ पर दुख प्रकट कर रहे होते हाँ कि अरे ये क्या वैष्णव बन गया, इतना जॉब करता था तो इतना बड़ा घर में गाड़ी आता था, बंगला होता था, नाते होते थे, पोते होते थे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन उनको पता नहीं कि उनके जो पूर्वज है वो सब खुशी के मारे वहां पर समाने जा रहे, सब उछल उछल के वहां पर नृत्य कर रहे, क्योंकि हमारे घर में क्या हुआ, एक वैष्णव का जन्म हो गया। तो इसलिए हमें एकदम अभी के स्थिति पे जाना नहीं चाहिए कि अपने माता पिता दुखी हो गए तो हम भी दुखी हो जाए, ऐसा नहीं होना। हमें देखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का कितना सुखी हो रहे हो, उनका सुख बनाए के रखने के लिए हमें भक्ति में टिके रहना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा, उसके लिए हमें निर्धार होना चाहिए कि हमें थोड़े से अभी के समय से डर के भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए, तो हमें लगे रहना चाहिए, कोई देखे या ना देखे। तो प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति आके बोला कि स्वामी जी, अगर भगवान नहीं है तो आप तो पूरा जीवन दुख में बिता दिया, अभी ना आपने भौतिक जीवन को एंजॉय किए, ना आध्यात्मिक जीवन आपको मिलने वाला है। तो प्रभुपाद जी बोले, ठीक है, अगर हम मानते हैं कि भगवान नहीं है तो हमारा जीवन कैसा रहा? एक भौतिकवादी व्यक्तियों से अच्छा जीवन भक्त का होता है, क्योंकि हम भी जय शिष्य राधा चंद्र की, जय शिष्य गौनिता की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। तो हम भक्त बनने के बाद क्या हुआ, हमने सबसे अच्छा प्रसाद लिया। तो भौतिकवादी लोग खाने को भी नहीं मिलता, इतना वो जॉब करते हैं, उनके खाने के लाले तो हम बता नहीं सकते। घर में कोई खाना बनाने नहीं चाहता, क्योंकि माता जी भी जॉब करती, प्रभु जी भी जॉब करते, दोनों के पास समय नहीं, लेकिन लक्ष्मी बहुत है। तो फिर क्या करते हो, होटल में जाकर खाते, और होटल में जो खाना बनाने वाला है और खाने वाले उनका कुछ संपर्क नहीं रहता है ना। तो उसमें चेतना एकदम कह रही थी, वो खाना बनाने में वो जो खाते हैं लोग, उसमें एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, वो व्यक्ति को उससे संपत्ति चाहिए और इनको सिर्फ उससे खाना चाहिए। तो ऐसे खाने से व्यक्ति की कभी भी संतुष्टि नहीं होती और चेतना में विकास नहीं होता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भौतिकवादी लोग, इतना उनके पास ऐश्वर्य है लेकिन वो क्या है, उनके पास सुख नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में जुड़ता है तो उसे सुख ही सुख मिलता है, उसका भौतिक जीवन भी एकदम सुख में होता है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर भगवान है तो आपका क्या होगा, है ना। और भगवान है और हमेशा रहेंगे, उसमें कुछ हमें डाउट नहीं होना चाहिए। और भगवद गीता में भगवान बोले हैं कि कालोस्मि भरतर्षभ, भगवान बोले भगवद गीता में कि मैं समय हूं। इसलिए भक्त क्या करता है, समय को भगवान के रूप समझता है, इसलिए वो कभी भी समय को व्यर्थ नहीं करता, है ना। बाहर भौतिकवादी लोग क्या बोलते हैं कि हमें टाइम पास करना, तो उनको समय का क्या है, वैल्यू नहीं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में जुड़े हुए लोग हैं, उनको समय से बहुत ही आदर और सम्मान के साथ वो समय बिताते, वो एक भी समय, एक भी क्षण वेस्ट नहीं करना चाहते, ये भक्तों का लक्षण है। तो इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं कि राजा पुरंजन को सिखाया जा रहा है उदाहरण के द्वारा कि अगर कोई व्यक्ति भौतिक समय को स्वीकार करेगा तो उसके अंदर ये सब व्यथा आएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लेकिन अगर ये चारों दुखों से अगर हमें निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नित्य, जो नित्य समय है उसमें हमें जुड़ना होगा। और नित्य समय में जुड़ना माने क्या, नित्य समय में जुड़ना माने भक्ति में लगे रहना। तो हमें ऐसा भक्ति करना है, दिन रात भक्ति करना है, सोते समय भी हमें भक्ति करना है। कोई बोलेगा सोते समय कैसे भक्ति करें, तो अर्जुन वगैरह जो ऐसे लोग थे, जो महान भक्त थे, जब वो सोते थे तो क्या होता था, उनके हर शरीर के हर रोम से भगवान का नाम सुनाई देता था। और जो भौतिक जीवन में जो कंडीशन सो ले उसका हाल क्या रहता है, उसका जागृत अवस्था में भी एक मुख से नाम निकलता है, सोने के बाद तो दूर की बात रही। तो इसलिए हमें इतना हमें डूबना है, जैसा आचार क्या हो जाता है, जितना देर वो तेल के अंदर रहता था उतना वो स्वादिष्ट बन जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम पूरी तरह से हम भगवत भक्ति से अप्लावित हो जाएंगे तो हमें समय का बिल्कुल डर नहीं लगा, मृत्यु का तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो इसलिए एक वैष्णव कवि ने लिखा है, भज उरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदर। तो हम अगर हमारा समय भगवान के चरणों में लगाएंगे तभी हमारे अंदर अभय माने फेयरलेसनेस आएगा। तो इसके अंतर्गत मैं ये श्लोक लेकर तुकाराम महाराज का अभंग लेकर यहां पर विराम लूंगा। तो यहां पर बोलते हैं तुकाराम महाराज, आनिका या काले न चले उपाय धरावे ते पाय विठोबा छे। तो वो बोलते हैं अगर हम भगवान विठल के पैर पकड़ेंगे तो हमारे ऊपर क्या होगा, समय का प्रभाव नहीं होगा। अगर हम भगवान के पैर नहीं पकड़ेंगे तो फिर समय हमको पकड़ेगा। अवघे छे पुण्य असे त्याचा पोटी अवघाचिया त्रुटि हो या पापा। तो क्या होगा अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तो सबसे बड़ा क्या है, पुण्य है। अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तो हम क्या होगा, सिर्फ पाप में ही गिरे रहेंगे। अवघे अवघे गोसावे अवघिया काले उद्धरती कुले नरक नर नारी। अगर हम इस प्रकार भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तो क्या होगा, हम हमारे उद्धार करेंगे, किसका, स्वयं के साथ साथ जो हमारे पूर्वज हैं उन सबका हम उद्धार कर पाएंगे। काल वेळ नाही गर्भवास दुखे उच्चारिता मुखे नाम एक। अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर ये जो गर्भवास है माने अगला जन्म, ये दुख हमारे जीवन में नहीं आएंगे। तुकामने काही न लागे सांडावे सांगत से भावे खेती तथा। तो इसलिए तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि इसके लिए ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना है, सिर्फ हमें भगवान का नाम लेना है। अगर हम ऐसा भगवान का नाम लेंगे तो हमारे ऊपर काल का प्रभाव नहीं गिरेगा। तो इसलिए हमें पता नहीं कि हमारा अंत कब होने वाला है, तो इसलिए हमें उसके पहले सावधान होना चाहिए, है ना। तो जो भी समय हमारे पास है उसे भगवान के सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा अगर हम प्रयास करेंगे तो ये जो काल की कन्या है, कौन है वो, जरा, जो अपने पति को ढूंढ रही वो भक्त को कभी पकड़ेगी नहीं। हालांकि भक्त भौतिक शरीर के द्वारा वो वृद्ध हो जाएगा लेकिन आध्यात्मिक कार्यों में वो कभी भी वृद्ध नहीं होगा। और आध्यात्मिक क्या है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के नाम का चिंतन करना, ये चीजों के लिए वृद्धत्व उसके ऊपर क्या है, पाबंदी नहीं है। कोई बूढ़ा हो जाएगा तो भगवान नाम नहीं लेगा, ऐसा नहीं। तो भगवान के भक्त जो तरुणावस्था में कर रहे वही वो चीज उनको वृद्धावस्था में भी करना है, वहां पर कुछ अलग समीकरण नहीं होते। तो ये जो भगवान की सेवा है वो हम बूढ़े हो या तरुण हो या जो भी अवस्था है, हमें भगवान की सेवा क्या करनी है, सदैव करना है। हाँ, उसमें कभी भी कमी महसूस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद के जीवन में भी अंत तक प्रभुपाद जी गीता या भागवत का क्या कर रहे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो वही सामर्थ्यता हमारे अंदर भी आएगी अगर हम हमारा जो भी समय अभी का है वो अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारा जो भविष्य है वो भी भगवान की सेवा में लग सकता है। लेकिन अगर हम हमारा अभी का समय भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हमारा भविष्य भी भगवान के समय में लगेंगे कि नहीं, उसका कुछ गारंटी नहीं है। इसलिए अगर हम ये सब जो दुख है उससे अगर निपटना चाहते हैं तो हमें हमारा अभी का जो समय है वर्तमान उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा नित्य जो आध्यात्मिक नित्य समय है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इतना बोल के मैं यहाँ विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने ध्यान से सुना, कुछ गलती हो गई तो कृपा करके क्षमा कर दी। श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।